रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की मांग 18 से 21 तक की जापान यात्रा कार्यक्रम को दी गई स्वीकृति। निर्भीक माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए काम किया जा रहा है, गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल का कथन। सीटी स्कैन मशीन खरीद में 7,31,00,000 रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपकुलपति डॉ संगीता भंडारी सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। और म्यांमार से विभिन्न प्रकार के ठगी धंधे संचालित करने वाले 11 लोगों को चीन ने दिया गया मृत्युदंड। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की जापान यात्रा कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में नेपाल और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मार्ग 18 से 21 तक जापान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पौड़ेल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को स्वीकृति देने का निर्णय लिया। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने दी। इसी तरह मंत्रिपरिषद बैठक ने नेपाल पुलिस के राशन स्केल तथा राशन के बदले मिलने वाली दैनिक राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है, ये जानकारी मंत्री अर्याल ने दी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नेपाल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पुनर्संरचना संबंधी सुझाव समिति 2082 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को सार्वजनिक करने का निर्णय भी किया है। गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि सरकार ने चुनावी सुरक्षा को मजबूत बनाने और निर्भीक वातावरण तैयार करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया है। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आज निर्वाचन आयोग में हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि आपराधिक तथा चुनाव विरोधी गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। चर्चा के दौरान कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने जानकारी दी कि चुनाव प्रबंध के लिए आयोग की ओर से आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंध के दौरान संविधान, चुनाव संबंधी कानूनों और चुनाव आचार संहिता के विपरीत किसी भी गतिविधि या कार्य के प्रति आयोग सख्त रुख अपनाएगा। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक वातावरण में संपन्न कराने के लिए समग्र शांति सुरक्षा तथा चुनाव के समय प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा भी हुई। यह जानकारी आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने दी। निर्वाचन आयोग ने आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए सकवर नेपाल में ही उत्पादित सामग्री प्रयोग करने का नीति लिया है। निर्वाचन को मितव्ययी, पारदर्शी बनाने और स्थानीय सामग्री का प्रयोग तथा प्रोत्साहन के लिए आयोग ने सकवर नेपाल में ही उत्पादित सामग्री प्रयोग का नीति लिया है। निर्वाचन के लिए कुल 51 सामग्री प्रयोग होने और अभी 37 प्रकार के सामग्री विकेंद्रीकृत रूप में प्रदेश और जिला से खरीद करके प्रयोग कराने के हिसाब से प्रबंध किया गया है, ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने दी। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुल 2160 मतदान स्थल में से 1246 मतदान स्थल अति संवेदनशील है। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के अनुसार भारतीय सीमा से जुड़े अधिकांश मतदान स्थल अति संवेदनशील में वर्गीकरण किया गया है। उनसे अनुगमन तथा सुरक्षा के उपाय के बारे में योजनाबद्ध काम हो रहा है, ये जानकारी मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता कमल थापा ने दी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि पार्टी देश की समृद्धि, सुशासन और सतत विकास के माध्यम से नेपाली जनता की खुशहाली और समृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से घोषणा पत्र तैयार कर रही है। आज ललितपुर के च्यासल स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के संदर्भ में घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सुझावों पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष ओली ने बताया कि जनता के व्यावहारिक पक्षों को समेटते हुए घोषणा पत्र बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि पार्टी तैयार किया जाने वाला घोषणा पत्र जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाला होना चाहिए। अध्यक्ष ओली के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय घोषणा पत्र मसौदा समिति का गठन किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत ने फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करते हुए समाचार प्रसारण करने का आग्रह किया है। आज प्रेस काउंसिल नेपाल द्वारा आयोजित पत्रकार आचार संहिता का कार्यान्वयन, निर्वाचन और निर्वाचन में मीडिया की भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सचिव बस्नेत ने कहा कि सामान्य मतदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने में मीडिया की भूमिका अहम होती है, इसलिए सभी मीडिया कर्मियों से चुनाव आचार संहिता के पालन की अपील की। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग की तत्कालीन उपकुलपति प्रोफेसर डॉ संगीता सिंह भंडारी तथा मशीन आपूर्तिकर्ता कंपनी हिमालयन मेडिटेक प्राली के संचालक सहित कुल 20 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया है। आयोग ने प्रतिष्ठान से सीटी स्कैन मशीन की खरीद के दौरान घटिया गुणवत्ता की मशीन लाकर 7,31,00,000 रूपये से अधिक की आर्थिक अनियमितता किए जाने के आरोप में आज विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दायर किया गया। यह जानकारी आयोग के प्रवक्ता सुरेश नोपाने द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने उपकुलपति भंडारी सहित तत्कालीन रजिस्ट्रार कैलाश प्रसाद देव, निर्देशक डॉ सागर पंथी, रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख, बायोमेडिकल इंजीनियरों, खरीद शाखा के कर्मचारियों तथा मशीन आपूर्तिकर्ता कंपनी हिमालयन मेडिटेक प्राली के संचालक समेत कुल 20 प्रतिवादियों से बिगो क्षति की वसूली कर कैद और जुर्माना की सजा की मांग करते हुए मामला दर्ज किया है। शहीद सप्ताह के अंतर्गत आज शहीद दुर्गानंद झा की स्मृति दिवस धनुषा के जनकपुर में मनाया गया। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए तत्कालीन पंचायती शासनकाल में मृत्युदंड दिए गए प्रथम गणतांत्रिक शहीद दुर्गानंद झा के बलिदान दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ धनुषा में मनाया गया। शहीद झा के पैतृक गांव नगरायन नगरपालिका के जटही में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पगुच्छा अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्कालीन राजा महेंद्र शाह पर जनकपुर में बम हमला करने के आरोप में 21 वर्ष की आयु में शहीद झा को विक्रम संवत 2020 माघ 15 को काठमांडू के सुंदरी जल जेल में गोली मारकर मृत्युदंड दिया गया था। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा गौतम शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में सुधार का काम हो रहा है। आज शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के 30वीं वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा को व्यवस्थित रूप में संचालन करने के लिए सरकार काम कर रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने आज दूरसंचार धोखाधड़ी घोटाले में शामिल मुख्य सदस्यों सहित म्यांमार स्थित आपराधिक गिरोह से जुड़े 11 लोगों को मृत्यु दंड दिया है। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। अरबों डॉलर के अवैध कारोबार से जुड़े इस ठगी उद्योग के म्यांमार के कानून विहीन सीमावर्ती इलाकों में फलने फूलने की बात कही गई है। इन क्षेत्रों से संचालित धोखाधड़ी केंद्रों में आमतौर पर विदेशी नागरिकों को कर्मचारियों के रूप में रखा जाता है, जिनमें बड़ी संख्या में चीनी नागरिक भी शामिल है। इनमें से कई लोगों ने बताया है कि उन्हें जबरन तस्करी कर वहां ले जाया गया और ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर किया गया। बीजिंग ने हाल में वर्षों में ऐसे ठगी केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। इस अभियान के तहत हजारों लोगों को चीन वापस भेजा गया है। आज जिन 11 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, उन्हें पिछले सितंबर में पूर्वी चीन के शहर बेंझोउ की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार अदालत ने अब उस सजा को लागू भी कर दिया है। मृत्युदंड पाए लोगों पर जानबूझकर हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने, अवैध हिरासत, ठगी और अवैध कामों को संचालन जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप सिद्ध हुए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की मांग 18 से 21 तक की जापान यात्रा कार्यक्रम को दी गई स्वीकृति। निर्भीक माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए काम किया जा रहा है, गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल का कथन। सीटी स्कैन मशीन खरीद में 7,31,00,000 रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान की तत्कालीन उपकुलपति डॉ संगीता भंडारी सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज और म्यांमार से विभिन्न प्रकार के ठगी धंधे संचालित करने वाले 11 लोगों को चीन में दिया गया मृत्युदंड। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।